الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قرآن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتارا ہے، یہ اللہ کی مبارک کتاب ہے. اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین سکھایا. دین اصل سیکھنا ہے ہمیں قرآن مجید سے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے رسولوں کے قصے بھی بیان فرمائے. نبیوں اور رسولوں کے قصے یہ ہمارے لیے بہت بڑا لیسن اور سبق ہے. نبیوں نے دنیا میں آ کے کیا کام کیا؟ نبی کیا سکھاتے ہیں؟ یہ آج کی مجلس کے اندر ہمیں کچھ سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑے نبی ہے جن کا نام حضرت نوح علیہ السلام ہے. نبیوں کے نام یاد ہونے چاہیے. حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہے، پہلے انسان ہے. آدم علیہ السلام کے بعد بہت لمبا زمانہ ہو گیا، تب حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا. نوح علیہ السلام کے زمانے میں لوگ الگ الگ بتوں کی عبادت پوجا پاٹ کرتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو ایمان کی دعوت دی، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی. اللہ کے نبی دنیا میں آ کر جو بڑی بڑی دعوت دیتے ہیں اس میں پہلی دعوت ہوتی ہے توحید کی، یعنی ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کی عبادت کرو. یہ نبیوں کی سب سے پہلی دعوت ہوتی ہے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام یہ روتے بہت تھے، بہت رونے کو عربی میں نوحہ کہتے ہیں. تو نوح علیہ السلام اللہ کے سامنے روتے بہت تھے، اس لیے ان کا نام نوح بن گیا. ان کا اصلی نام دوسرا ہے. اور اللہ کے نبی، رسول، پیغمبر اللہ کے سامنے رونے والے ہوتے ہیں. اور جو آدمی اللہ کے سامنے روئے گا، اللہ کا وہ پیارا اور لاڈلا بندہ ہوگا. رونے کی برکت سے اللہ ضرورت پوری کرتے ہیں. آپ چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہو نا، روتا ہے، ماں دودھ پلاتی ہے، روتا ہے، ماں اس کی نیپی بدل دیتی ہے، گندی ہو گئی، روتا ہے بچہ، ماں دوا پلاتی ہے. تو رونے سے ضرورت پوری ہوتی ہے، رونے سے ماں اٹھا کے گود میں لے کر پیار کرتی ہے. تو بندہ بھی اللہ کے سامنے روئے تو رونے کی برکت سے اللہ اس سے پیار کرے، محبت کرے. رونے کی برکت سے اللہ ضروریات پوری کرے. تو اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں، وہ اللہ کے سامنے روتے ہیں. نبیوں کے رونے کا ایک مقصد ہوتا ہے، لوگوں کی ہدایت اللہ سے مانگتے ہیں، رو رو کر اللہ سے کہتے ہیں، اے اللہ آپ لوگوں کو ایمان دے دو، لوگوں کو ہدایت دے دو. یہ رو رو کر نبی مانگتے ہیں. رونے کی برکت سے جہنم کی آگ سے حفاظت ہوگی، رونے کی برکت سے گناہ معاف ہوں گے، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے سامنے روتے تھے. آپ کو معلوم ہے نا کہ مکہ میں دو ڈینجر آدمی تھے، دادا قسم کے آدمی. وہ دونوں میں سے کسی ایک کو ایمان مل جاوے، ہدایت مل جاوے، اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو رو رو کر اللہ سے دعا مانگتے تھے. اب اجتماع ہے، رات کو رو رو کر دعا کرو اللہ کامیاب کرے. جو مسلمان ہدایت پر نہیں ہے، وہ مسلمان ہدایت پر آ جاوے، اس کے لیے رو رو کے دعا کرو. दो काम है, मेहनत और रोना, तो रिजल्ट आएगा। लोगों को अल्लाह का दीन सिखाने के लिए मेहनत भी करनी है और अल्लाह ताला के सामने रोना भी है। नबी रोते थे, अल्लाह के नेक बंदे भी रोते थे और हम तो बड़े गुनहगार हैं, पापी लोग हैं, हमें भी अल्लाह के सामने रोना चाहिए। रोने का एक मकसद अपने गुनाह से माफी के लिए रो, हे अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर दीजिए, रो। रोने का दूसरा मकसद है अल्लाह के डर से रोना, ताकि अल्लाह की मोहब्बत हमको मिल जावे, जहन्नम से छुटकारा मिल जावे। रोने का तीसरा मकसद है अपनी और अपने घर वालों की और उम्मत की हिदायत के लिए रोना। बहुत जरूरी है, आप सब नियत करो कि रोजाना 15-20 मिनट अल्लाह से दुआ करेंगे। अरे बोलो इंशाअल्लाह। और दुआ में आंसू निकालो, रो अल्लाह के सामने। तो जितने भी नबी आए उनका एक बड़ा काम ये होता था कि लोगों को एक अल्लाह की इबादत की दावत देते थे। अब हजरत नूह अलैहि सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी है, रसूल है, पैगंबर है, और वो लोगों को एक अल्लाह की इबादत की दावत दे रहे हैं। अल्लाह ने उनका किस्सा कुरान में कितनी जगह बयान किया, उनके नाम पर पूरी सूरत अल्लाह ने उतारी। उस सूरह नूह में पहली आयत में फरमाया इन्ना अरसलना नूहन इला कौमी अन अनذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم। अल्लाह ताला ने फरमाया कि नबी नूह आप अपनी कौम को जहन्नम की आग से डराओ, अगर ये ईमान नहीं लाएंगे अल्लाह का अजाब आएगा। इसीलिए कौम को कहो कि एक अल्लाह पर ईमान ले आओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने ईमान की दावत दी, एक अल्लाह की इबादत करो। قال يا قوم اني لكم نذير مبين। ए लोगो मैं तुमको खुल्लम खुल्ला डराता हूं कि ईमान नहीं लाओगे अजाब होगा, जहन्नम होगी। खुल्लम खुल्ला ओपनली मैं तुमको डराता हूं। ईमान की बरकत से अजाब से हिफाजत होगी, ईमान की बरकत से जहन्नम की आग से हिफाजत होगी। इसीलिए नूह अलैहिस्सलाम ने लोगों को ईमान की दावत दी। अनिअबुदुल्लाह वत्तकूहु वअतीउन, तीन बात की दावत, बड़ी जबरदस्त दावत दी। पूरी दावत का खुलासा अनिअबुदुल्लाह, एक है तुम अल्लाह ताला की इबादत करो। किसकी इबादत करनी बोलो, अरे जोर से जवाब दो, अल्लाह की इबादत। किसकी इबादत, अल्लाह की इबादत। अनिअबुदुल्लाह, किसकी इबादत करनी? अल्लाह की इबादत करनी। दूसरा काम क्या करना दावत में? अनिअबुदुल्लाह वत्तकू, अल्लाह से डरो। बताओ डरेंगे किससे? अल्लाह से। अल्लाह को हर चीज की खबर है। कोई आदमी तन्हाई में, एकांत में, प्राइवेसी में चला जावे, अल्लाह हर जगह देखते हैं। लोग क्या समझते हैं कि बीच पे उंगराट दरिया किनारे पे चले जाओ, दूर झाड़ी में जाओ, गलत काम करो, कोई नहीं देखेगा। अरे अल्लाह तो वहां भी देखते हैं। अल्लाह हर जगह देखते हैं, इसलिए अल्लाह से डरो। और तीसरी बात फरमाई वा अतीउन, नबी की बात मान करके जिंदगी गुजारो। ये तीन बातें याद रख लो। इबादत करेंगे किसकी? अल्लाह ताला की। डरेंगे किससे? अल्लाह ताला से। और इताअत यानी बात अमल किसकी सुन्नत पर करेंगे? नबी की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर जिंदगी गुजारेंगे। ये तीन दावत थी हजरत नूह अलैहि सलाम। अनिअबुदुल्लाह वत्तकूहु वअतीउन, अल्लाह की इबादत, अल्लाह से डरना, नबी की बात मान के चलना, तो क्या मिलेगा? आदमी हर काम में पूछता है क्या मिलेगा, तो नबी की दावत को मानोगे, एक अल्लाह की इबादत करोगे, अल्लाह से डरोगे, तो क्या मिलेगा? यगफिर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ कर देंगे। गुनाह की माफी हो जाए ये बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह गुनाह माफ कर देंगे। अब देखो दो तरह के गुनाह होते, याद रखो। एक गुनाह ऐसे होते हैं जो हम अल्लाह के गुनाह करते हैं, अल्लाह की नाफरमानी, नमाज नहीं पढ़ी अल्लाह का गुनाह किया, शराब पी अल्लाह का गुनाह किया, शराब हराम है। इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलि शैतान फजतनिबु, शराब जुगार हराम है, शैतान के काम है, छोड़ो उसको, बचो उससे। और दूसरे गुनाह कैसे होते हैं? इंसान इंसान के गुनाह करता है, किसी से रुपये कर्ज लिए ने देता नहीं है, ये इंसान का इंसान से पाप हुआ, गुनाह हुआ, किसी को मार दिया वगैरह कारण, ये इंसान का गुनाह हुआ इंसान से। अल्लाह के जो गुनाह हैं वो इबादत की बरकत से अल्लाह माफ कर देंगे, लेकिन इंसानों के गुनाह वो इंसान के साथ हिसाब किताब करना पड़ेगा। कर्ज बाकी है तो चुकाओ, जिसको मारा उसके पास जाके सॉरी कहके माफी मांगो। इसीलिए आयत में क्या फरमाया अल्लाह ताला ने, यगफिर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम, وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرْ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
دنیا کی زندگی مزے سے گزرے گی, نبی کی دعوت مان لو, نبی کی بات مان لو, اللہ کی عبادت کرو, اللہ سے ڈرو, تو دنیا کی زندگی بڑی اچھی گزرے گی, عذاب سے حفاظت ہو جائے گی. آج دنیا بھر میں مسلمانوں پہ آفت ہے, آفت میں مسلمان ہے اس وقت. بہت ممکن ہے اور قرآن حدیث کی روشنی میں لگتا ایسا ہے کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں, نبی کی بات نہیں مانتے, نبی نے دعوت دی اچھے کام کرنے کی, ہم اچھے کام نہیں کرتے. نبی نے دعوت دی گناہ چھوڑنے کی, ہم گناہ نہیں چھوڑتے, تو لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس وقت امت پر آفت ہے, ایک آفت کا ماحول بنا ہوا ہے امت پر مسلمانوں کے, اور اس کی ایک وجہ, ایک ریزن, ایک کارن کہ نبیوں نے دعوت دی اچھے کام کرنے کی, ہم اچھے کام نہیں کرتے. نبیوں نے گناہ کے کام سے روکا, ہم رکتے نہیں ہیں, گناہ کرتے رہتے ہیں. اسی لیے اس مجلس میں نیت کرو کہ انشاءاللہ گناہ کو چھوڑ دیں گے, اور نبیوں نے جو اچھے کام کرنے کے لیے کہا وہ سارے اچھے کام انشاءاللہ کریں گے. کہو انشاءاللہ. نبیوں کی یہ دعوت ہوتی تھی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. بھائی دین کی بات سمجھانے کے لیے رات میں بھی جانا پڑتا ہے, دن میں بھی جانا پڑتا ہے. نبیوں نے رات میں بھی لوگوں کو دین سکھایا اور دن میں بھی دین سکھایا. اجالے میں بھی گئے نا, اندھیرے میں بھی گئے. اب دیکھو ہمارے یہاں کتنی اچھی ترتیب ہے, جو لوگ دن بھر کام میں جاتے ہیں تو ان کو رات میں ملاقات کرو, ملاقات کر کے ان کو مسجد لاؤ, ملاقات کر کے ان کو دین کے لیے سمجھاؤ, اور جو لوگ دین میں مل جائے ان کی دین میں ملاقات کرو, فجر میں ملاقات کرو. تو اللہ کا دین رات میں بھی سکھاؤ. ابھی ہم سب بیٹھے رات میں اللہ کا دین سیکھ رہے, یہ بھی طریقہ ہے اللہ کے نبیوں کا کہ رات میں دین کی بات سکھانا اور دین میں سکھانا اجالے میں. اللہ کے نبی نے دونوں طرح سے دین کی دعوت دی. اور مسلمان بھائیوں, حضرت نوح علیہ السلام جیسے نبی نے 950 برس تک اللہ کے دین کی دعوت دی. کتنے برس؟ 950 برس ایمان کی دعوت دی, اللہ کے دین کی دعوت دی. نہ آج چار مہینے ہم کو باری پڑتے تھے, 40 دن باری پڑتے, 3 دن باری پڑتے, 8-10 سال مدرسے میں لگانا باری پڑتا ہے. 950 برس کس کو کہتے ہیں سوچو, 950 برس ایمان کی دعوت دی. ایک روایت میں حضرت نوح علیہ السلام کی ٹوٹل عمر 1400 سال کی ہے. کتنی عمر؟ 1400 سال. پہلے ایسی لمبی لمبی عمر ہوتی تھی, آج جناتوں کی بھی ہوتی ہے ایسی عمر. اس امت کو اللہ نے عام طور پر عمر دی 60-70 کے بیچ کی,
حدیث میں میری امت کی عمر 60-70 کے بیچ میں, تو جو 60 کے اوپر جاوے نا وہ نفع میں, نہ 70 کے اوپر جائے وہ ڈبل نفع میں. اب جو چھوٹی عمر ملی تو وقت تھوڑا ہے تو کام زیادہ کرنے کا, ان کو لمبی لمبی عمر ملی. حضرت نوح علیہ السلام کو ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ حضرت 400 سال کی عمر کیسی لگی, یہ تفسیروں میں روایت ہے, تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ 400 برس کی عمر کیسی لگی, ایک گھر کے 2 دروازے ہوئے, ایک آگے کا نہیں ایک باڑے کا پیچھے کا, تو کہا آگے والے دروازے سے آئے نے پیچھے کے دروازے سے نکل گئے, ایسی 400 برس کی عمر لگی. یہ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں. تو اس امت کی 60-70 ایسی نہیں, 100 والی عمر تو کتنی چھوٹی ہوگی, اندازہ لگا. اس لیے ہمارا ٹائم کم ہے, کام زیادہ کرنا ہے ہم کو, اور اللہ کم وقت میں ہم کو زیادہ دیتے ہیں, یہ اللہ کی مہربانی ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس امت کو اللہ کم کام پہ زیادہ دیتے ہیں, کتنی فضیلت اس امت کی سوچو. ہم بار بار سنتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو, تھوڑا کام کرنے پر بھی اللہ زیادہ دیتے ہیں. ایک رات میں عبادت کرو لیلۃ القدر تو 1000 مہینے سے زیادہ عبادت کا ثواب ملتا ہے, 1000 مہینے سے زیادہ عبادت کا ایک رات میں اللہ ثواب دے دیتے ہیں. اچھا آپ سب نے, میں نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی, پڑھی نا عشاء کی نماز, کہو الحمدللہ. جماعت کے ساتھ نماز پڑھی تو 27 نماز کا اللہ ثواب دیتے ہیں. کتنی نماز کا؟ 27 نماز کا اللہ ثواب دیتے ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی. اس امت کو چھوٹی عمر دی, کام کا ٹارگیٹ زیادہ دیا, لیکن ثواب بھی اللہ نے زیادہ دیا. کنتم خیر امہ, بہترین امت ہو. کتنا اچھا, اپنے کو مزہ ہی مزہ, تھوڑا کام کرو ثواب سے زیادہ کماؤ. اچھا اللہ کی شان دیکھو, ایک نیک کام کرو, ایک اچھا کام کرو. مثلا سب میرے ساتھ کلمہ پڑھو, ایک چھوٹا سا عمل کرتے, لا الہ الا اللہ, سب پڑھو یقین کے ساتھ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, شہادت کی انگلی کے ساتھ پڑھو, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. آپ کو میں بتاؤں, ایک نیکی پر اللہ کیا دیتے ہیں, چھوٹا فائدہ, اللہ کا قانون, من جا بالحسنت فلہ عشر امثالیہ, ایک نیکی پر کم از کم 10 گنا زیادہ دیتے ہیں. آج دنیا میں کوئی ویپاری 1 کے 10 کرے تو لوگ کیا کہتے ہیں, بہت ہوشیار ہے, 1 کے 10 کرتا ہے. تو اللہ تو اپنے ہر بندے کو 1 پر کم سے کم 10 دیتے ہیں نیکی. اور آگے مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء.
इस आयत ने तो बतलाया कि एक पर 700 मिलेगा,
एक पर कितना मिलेगा
700 मिलेगा, 700 एक पर, और आगे अनलिमिटेड कहा सवाब अल्लाह ने।
आपने गुजराती रेस्टोरेंट देखी ना, होटल में थारी दो तरह की, लिमिटेड ना अनलिमिटेड,
आगे अनलिमिटेड, पहले लिमिटेड थारी अल्लाह ने रखी कि 700 कम से कम 10, फिर अल्लाह ने अनलिमिटेड ऑफर कर दी। वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, अल्लाह जितना चाहते इतना सवाब ज्यादा बढ़ाते चले जाएंगे, अनलिमिटेड।
हमको गिनना भी नहीं, गिनना भी मुश्किल, इतना सवाब अल्लाह ताला देंगे। याद रखो, ये इस उम्मत पर अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है कि एक नेकी पर 700 और उसके ऊपर ऊपर कितना देंगे, अल्लाह अपनी शान के मुताबिक देंगे। वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है इस उम्मत के वास्ते। तो हजरत नूह अलैहि सलाम ने 1400 साल की उम्र पाई एक रिवायत में, और 950 बरस लोगों को ईमान की दावत दी। कितनी मेहनत की होगी नूह अलैहि सलाम ने। हजरत नूह अलैहि सलाम हर तरह लोगों को दावत दे रहे हैं, लोग मारते थे, नबी को मारते थे, इतना मारते थे, इतना मारते थे कि नबी बेहोश हो जाते थे। फिर अपने आए जो सब बिछाई ने ऐसी जाड़ी मोटी शतरंजी के कपड़े में लपेट करके नबी को घर में डाल के आते थे, मार मार के बेहोश हो जाते थे अल्लाह के नबी। और मारने की रीजन और वजह किया, एक अल्लाह की इबादत की दावत देते थे, एक अल्लाह की इबादत की दावत की वजह से लोग मारते थे। कोई पत्थर मारे, कोई चप्पल जूते मारे, कोई डंडा लाके मारे, मार खाते खाते नबी बेहोश हो जाते थे, फिर जाड़े कपड़े में लपेट के घर में ले जाके डाल देते थे, फिर होश आता था, ट्रीटमेंट हुई, अच्छे हुए, फिर जाकर लोगों को कहते थे अनिबुदुल्लाह वत्तकूहु वातिउन, एक अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह से डरो, नबी की मान के जिंदगी गुजारो। मार खाने के बाद जब होश आया, तबीयत अच्छी हो गई, फिर यही दावत देते थे, एक अल्लाह की इबादत, अल्लाह से डरो, नबी की मान के जिंदगी गुजारो, ये दावत देते थे। मार खा खा के भी, पब्लिक भी कैसी थी, एक तरफ तो मारते थे, दूसरी तरफ क्या करते थे। وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا। पब्लिक भी अजीब थी, आज भी ऐसी पब्लिक अपने को मिलती है। हजरत नूह अलैहि सलाम ईमान की दावत देवे तो कान में उंगलियां रख देते थे, यूं करके उंगली बंद कर देते थे, क्यों, ताकि नबी की मुबारक और पाकीजा दावत सुननी न पड़े। कैसी कौम, कान में उंगलियां डाल देते थे, सुनना नहीं हमको। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको लोग भमाते हैं कि भाई ईमान की दावत की पाकीजा बात मत सुनो, वरना तुम्हारे दिल में ईमान उतर जाएगा, ने तुम कलमा पढ़ के पक्के मुसलमान हो जाओगे, इसीलिए इनकी बात मत सुनो, कान में उंगलियां डालो, सुनो मत इनकी बात को। तो पब्लिक भी ऐसी कान में उंगलियां डाल देवे, दूसरा क्या काम करे। हजरत नूह अलैहि सलाम ईमान की दावत देने जावे तो गोदड़े ओढ़ के लपेट के सो जावे अंदर, वस्तक शौकी आवा हो, कपड़े लपेट देवे, गोदड़े लपेट देवे अपने ऊपर, ताकि बात सुननी पड़े किसके लिए हो। आज भी होता है ना ऐसा कि किसी को दावत देने जाओ दिन की, तो कहते काम में है अभी नहीं आएंगे, तो अल्लाह का शुक्र अदा करो काम में ही हो, कहते वरना बहुत से लोग तो सच्चा झूठ बोलते हैं कि घर में नहीं है, घर में है और कहते घर में नहीं है। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने की कौम भी ऐसी थी, कपड़े में लपेट जावे और कहे कि हमको दावत सुननी न पड़े, और जिद पे उतर आवे और तकब्बुर करे हमको मानना ही नहीं। सांप के दे नबी को सांप कहते थे कि हम दावत कबूल नहीं करेंगे मानेंगे थे। वह असर्रु वस्तकबरु इस्तिकबारा, हर तरह नबी ने दावत दी उनको। सुम्मा इन्नी दाउतुहुम जिहारा, सुम्मा इन्नी आलंतु लहुम वअसररतु लहुम इसरारा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इनफिरादी, इज्तिमाई, अलल एलान, सिर्रन हर तरह लोगों को ईमान की दावत दी और समझाया, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं। आप सोचो 950 बरस दीन की दावत देवे ने 70-72 ऐसी आदमी ईमान लाए, कितने आदमी ईमान लाए? 70-72 ऐसी इतने आदमी ईमान लाए। इतनी लंबी मेहनत फिर भी इतने ही लोग ईमान लाए। अब नबी को कितनी तकलीफ हुई होगी अंदाजा लगाओ। तो फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के सामने बद्दुआ की, रब्बी ला तज़र अलल अर्द मिनल काफिरीन दय्यारा, इन्नका इन तज़रहुम युदिल्लु इबादत वला यलिदू इल्ला फाजिरन कफ्फारा। अल्लाह आप तो ईमान नहीं लाते, अब इनका सत्यानाश कर दो। अल्लाह को कहा करो इनका सत्यानाश, ईमान नहीं लाते लोग, नबी की बात नहीं मानते, नबी की मुबारक दावत कबूल नहीं करते, सत्यानाश करो अल्लाह इनका, खत्म करो इनको, एक भी बचना नहीं चाहिए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम अजाब भेजेंगे, तुम्हारी दुआ कबूल है, लेकिन नबी को और ईमान की दावत जिन्होंने मान ली उनको हम बचा लेंगे। बचेगा जो ईमान लाया, जो अल्लाह से डरा, जिसने नबी की बात मान ली वो बचेगा, बाकी सबको हम डुबो देंगे। तो कहा बचने के लिए क्या करोगे? तो कहा एक स्टीमर बनाओ, बोट बनाओ। उससे पहले दुनिया में कोई बोट स्टीमर बनाना जानता नहीं था, होड़ी बनाना जानता नहीं था। सबसे पहले अल्लाह ने जिब्राइल फरिश्ते को भेजकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम को होड़ी कैसे बनानी वो सिखाई कि होड़ी बनाओ ताकि अजाब आएगा अल्लाह का तो ईमान वाले बैठ जाएंगे ने बच जाएंगे। तो बनाना चालू किया तो लोग मजाक करने लगे कि यहां पानी के ठिकाने नहीं है तो होड़ी चलाओगे कहां। लोगों ने मजाक उड़ाना चालू किया, जो भी जाता नूह अलैहिस्सलाम की होड़ी देखता तो वो मजाक उड़ाता। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने होड़ी बनाई, होड़ी बन गई, अब अल्लाह का अजाब शुरू हुआ। एक रिवायत ऐसी है कि रज्जब की 10वीं तारीख को अजाब चालू हुआ। आइंदा महीना रज्जब है, ये जुमादिल उखरा चल रहा है, रज्जब की 10वीं तारीख को अजाब चालू हुआ अल्लाह ताला का। पानी, आसमान से बारिश, जमीन में से पानी, पानी की पानी निकलने लगा, सैलाब आया, रेल आई, कितना पानी आया सुना हूं आपको, कितना पानी आया। उस जमाने में दुनिया में जो सबसे ऊंचा पहाड़ था, जैसे कि आज हिमालय है, तो दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पे तुम जाओ तो ऊपर 40 हाथ पानी था, 60 फुट। दुनिया में जो सबसे ऊंचा पहाड़ उसकी चोटी पे चढ़ो ऊपर तो उसके ऊपर 60 फुट 40 हाथ पानी था। अंदाजा लगाओ कितना बड़ा सैलाब आया होगा, कितनी बड़ी रेल आई होगी। और एक दिन, 10 दिन 15 दिन रेल नहीं, 10 रज्जब को चालू हुई, मुहर्रम की 10वीं तारीख तक ये सैलाब और रेल का अजाब रहा। पूरे 180 दिन यानी 6 महीने तक ये अजाब दुनिया के अंदर पानी का रहा। अपने यहां तो 3 दिन पानी रहे नहीं तो बोमा बूम हो जाए, कुछ पैकेट डालो, ने हेलीकॉप्टर बुलाओ, रेस्क्यू करो, रेस्क्यू टीम बुलाओ। अब सोचो 6 महीने पानी का तूफान रहा, रज्जब की 10वीं तारीख को चालू हुआ, रज्जब, शाबान, रमजान, शव्वाल, जिलका, जिलहज, मुहर्रम, अरे याद है ना इस्लामी महीने, कि इस्लामी महीनों के नाम में बोलना हो कि इस्लामी महीनों के नाम भी याद करो और बोर्ड पर इस्लामी तारीख वाचा करो, इमाम साहब लिखे ने पब्लिक को वाचने का कि भाई ये कौन सा महीना चालू हुआ, कौन सा चांद हुआ, ने ऐलान भी करने का कि भाई आज चांद देखो, ने चांद देखे तो डाबे जाके गवाही देके आओ, ऐसा भी करने का सिस्टम। तो रज्जब की 10वीं तारीख को पानी का अजाब चालू हुआ, ने मुहर्रम की 10वीं तारीख तक अजाब पानी का अजाब चालू हुआ। तंदूर जानते हो ने, तंदूर, उसमें वो रोटी बनाते हो, तंदूरी, वो तंदूर कहलाता है। तो वहां अरब से अपने आया ने तो वो तंदूर बन गया, तंदूर कहते हैं उसको, वहां से तंदूरी हो गई थी तंदूरी। तो तंदूर जिसमें आग होती है, रोटी बनाते हैं और भी बहुत से काम करते हैं। तो एक तंदूर था, वो कहते हैं कि हजरत हव्वा जन्नत में से लाई थी, माँ हव्वा आदम अलैहिस्सलाम की बीवी, वो कूफा में जामे मस्जिद के दरवाजे पे लगा हुआ था। तो अल्लाह ताला की तरफ से कहा गया था निशानी वफारत तन्नूर, कि वो तन्नूर जिसमें आग होती है, आग के बजाय अंदर से पानी निकले, तो समझने का कि अब अल्लाह का अजाब शुरू हो गया, ये निशानी थी। तो जल्दी 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 ईमान वालों को होड़ी में बैठ जाने का, स्टीमर में बैठ जाने का, 3 फ्लोर थे वो स्टीमर के, नीचे बीच में न ऊपर। अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम और ईमान वाले बैठ गए ऐसा, और बैठ करके दुआ पढ़ी, वकाल अरकबु फीहा बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्न रब्बी लगफूरुर रहीम। ये दुआ याद करो, बाइक पे बैठने का बहुत शौक है, कार में घूमने का शौक है, दुआ भी सीखो, बगैर दुआ पढ़े गाड़ियों में मत बैठो, गाड़ी पे बैठो दुआ पढ़ो, टू व्हीलर पर, फोर व्हीलर पर, बस में, ट्रेन में, एरोप्लेन में, स्टीमर में, जिस सफर की सवारी में बैठो दुआ पढ़ो उसके ऊपर बैठ करके, बिस्मिल्लाही मजरेहा व मुरसाहा इन्न रब्बी लगफूरुर रहीम, सुबहानल्लज़ी सख़्खरा लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। दुआएं पढ़ो फिर सफर में जाओ। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बैठ गए, ईमान वालों को बिठा दिया।
और जब पानी का तूफान चालू हुआ
तो काफिर लोग, बेईमान लोग जिन्होंने दावत कबूल नहीं की थी, सब डूबने लगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अच्छा, जवानी में है ना नशा होता है, तो एक नौजवान को हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, कहते हैं कि वो आपका सावका छोकरा था, ऐसा बास तफसीरों में लिखा है, सग्गा छोकरा नहीं था, सावका था। قال يا بني اركم معنا, बेटे बैठ जा, ईमान लान बैठ जा, बचेगा। तो कहने लगा, नहीं मैं नहीं बैठने का, जवानी के जज्बात कुछ और होते हैं। वो क्या कहता है,
قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء, मुझे पानी और तूफान से मत डराओ, मैं तो पहाड़ पे जाऊंगा। नहीं, वहां पानी थोड़ा आ सकता, पहाड़ पे बच जाऊंगा।
वो पहाड़ पे जा भी नहीं सका, डिस्कस कर रहा था, डिस्कस, बहुत डिस्कशन, बहुत बातें नहीं करने की, चुपचाप अल्लाह के दीन की बातें मान लेने की, बहुत डिस्कस ने बासों में पढ़ने का नहीं, वो भी शैतानी चक्कर है। अल्लाह के दीन की बात चुपचाप मान लेने की, कुरान में आया, हदीस में आया, अल्लाह ने बताया, नबी ने बताया, अक्कल में आवे कि नहीं आवे चुपचाप मान लो। मोमिन क्या होता है, समिना वाताना, अल्लाह रसूल की बात सुनी और हम मानेंगे, अमल करेंगे, ये ईमान वाला होता है। ईमान वाला क्या, समिना वाताना, अल्लाह रसूल की बात सुनी और मानेंगे, अमल करेंगे। तो डिस्कस में पड़ा रहा हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ, दलील बाजी, बहस। इतने में पानी की एक जोरदार उछलती हुई मौज आई, नबी कश्ती में थे, ने वो जवान बाहर था, ने बाहर से डिस्कस कर रहा था, एक जोरदार पानी की मौज आई, वहाल बैनहुम अल-मौज फकान मिनल मुगरकीन, ऐसी मौज की थप्पड़ आई कि वो नौजवान को पानी में डुबो करके खत्म कर दिया। मुसलमान भाइयों, ये तीन चीजें समझो, अनिबुदुल्लाह वत्तकूहु वअतीउन, अल्लाह के अजाब से बचना है, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह से डरो, और अल्लाह के नबी की बात मान के जिंदगी गुजारो। ये नबी की कुल दावत का खुलासा, निचोड़। अजाब से बचना है, हम कहते नहीं इस वक्त अजाब है, अजाब है, अजाब है, आफत है, आफत है, आफत है, जुलम है, जुलम है, जुलम है, जुलम है। ये तीन काम कर लो, अनिबुदुल्लाह, ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कुल दावत का खुलासा, निचोड़। बल्कि तमाम नबियों की दावत में ये बात मिलेगी आपको, अनिबुदुल्लाह, एक अल्लाह की इबादत करो। किसकी इबादत करेंगे बोलो, एक अल्लाह की। वत्तको, अल्लाह से डरो, किससे डरोगे, हर जगह अल्लाह है, हर जगह अल्लाह है, घर में भी अल्लाह, मस्जिद में भी अल्लाह, दुकान पर भी अल्लाह, खेती में भी अल्लाह, दरिया किनारे भी अल्लाह, जंगल झाड़ी में भी अल्लाह, जहां भी हो अल्लाह। वत्तको, अल्लाह से डरो, वहुवा माकुम अइनमा कुंतुम, तुम जहां भी होंगे अल्लाह है। वअतीउन, और अल्लाह के नबी की बात मान करके जिंदगी गुजारो, अल्लाह ताला अजाब से बचा लेंगे।
सब तबाह हो गए, सब दुख के खत्म,
ओड़ी में जो ऐसी मोतेर आदमी बैठे थे वो बच गए, जिन्होंने ईमान की दावत कबूल की, अल्लाह की इबादत की, अल्लाह से डरे और नबी की बात मान के जिंदगी गुजारी, वो बच गए ओड़ी में। 6 महीने ओड़ी में रहे और 6 महीने गुजरने के बाद क्या हुई? वकील या अर्द बलई माकी व या समाउ अकली वगीदल मा व कुदियल अम्र पस्तवत अलल जूदी। अल्लाह ने कहा पानी आसमान, अब बारिश बंद करो, जमीन पानी मत निकालो बाहर। हमारा ईमान है ना कि बारिश अल्लाह के हुक्म से बरसती है। बारिश कौन बरसाता है? अल्लाह के हुक्म से बरसती है। अल्लाह ने आसमान को कहा बरसाओ तो बरसाई, अल्लाह ने कहा रुक जाओ तो बारिश रुक गई। आप कितनी मरतबा आगाही सुनते हो कि रेड सिग्नल है न ग्रीन सिग्नल है, न कितनी आगाही आती जी रहती है, लेकिन बाज मरतबा एक टीपा भी बारिश नहीं होती, न बाज मरतबा बिगैर आगाही के धमाधम मूसलाधार बारिश आ जाती है। किसके हाथ में बारिश बोलो? अल्लाह के हाथ में। तो अल्लाह ने आसमान को कहा बारिश बरसाना बंद कर, जमीन में से पानी निकल रहा था, अल्लाह ने जमीन को ऑर्डर दिया पानी निकालना बंद। वकील या अर्द बलई माकी व या समाउ अकली वगीदल मा, पूरी जमीन पर पानी सूख गया, जितने नबी की दावत कबूल नहीं थी सब खत्म। और जूदी नाम का एक पहाड़ है, जूदी, अभी न्यूज में उस इलाके की बातें सब आ रही थी पिछले हफ्ते, उस इलाके में जूदी है पहाड़, तो उस जूदी पहाड़ पर नूह अलैहि सलाम की तस्वीर की और फिर पानी सूखने के बाद उतर के दुनिया में आए और ये नया जगत शुरू हुआ। मेरे ईमान वाले भाइयों, मैंने ये हजरत नूह अलैहि सलाम की दावत और दावत का खुलासा और उसके ऊपर अजाब से हिफाजत ये बात इसलिए सुनाई कि आज के आफत के हालात में, जुल्म के हालात में, परेशानियों के हालात में अगर अपने आप को बचाना है तो ये 3 काम करने पड़ेंगे, जो नूह अलैहि सलाम की दावत का खुलासा, जो नबियों की दावत में भी मिलता है, अनिअबुदुल्लाह, किसकी इबादत करेंगे? अल्लाह की। वत्तको, डरेंगे किससे? अल्लाह से। वअतीउन, बात मानेंगे, अमल किसकी सुन्नत पर करेंगे? अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक तरीके पर। ये नूह की बात है, हमारे हाजिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर चलना है। करोगे ये काम तो ये अजाब का माहौल भी अल्लाह इंशाल्लाह खत्म कर देंगे, ये आफत मुसीबत का माहौल भी दूर हो जाएगा और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें तमाम आफतों से नजात और छुटकारा देंगे। अब बताओ कौन कौन तैयार है इस मुबारक काम के लिए? अल्लाह की इबादत, अल्लाह से डरना, नबी की बात मान करके चलना, आप लोग सब तैयार हो इसके लिए? हाथ उठाओ, हम सब करेंगे ये काम, करेंगे सबके सब, माशाल्लाह। अब देखो हमारे सामने बड़े तकाजे हैं, एक तो ये है कि हमारे यहाँ इज्तिमा आ रहा है,